क्षेत्रगढ़ नवा क्षेत्रज्ञ का वर्ण हुआ, क्षेत्रज्ञ के साथ परमात्मा की एकता वर्ण हुआ, दोनों का ज्ञान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ठीक तरह से वो ज्ञान भगवान मत ज्ञान है। फिर श्लोक में है छदर कहने के लिए प्रतिज्ञा की, वेदों में सूत्रों ने कहा इस बात की। इसके बाद क्षेत्र का और क्षेत्र के विकारों का वर्णन किया, उसके बाद ज्ञान का वर्णन आया अमानित से योग अज्ञान यदि तो अन्य था तो ज्ञान गति प्रवर्तन अज्ञान वेदों से आंसर ज्ञान का वर्णन 20 लक्षण में होता है। अब ज्ञान के द्वारा ये किया है इसका वर्णन करते हैं। इस ज्ञान से क्या ज्ञान जाते ज्ञान नाम कर्ण का है, कर्ण ज्ञान कर्ण मन विवेक ज्ञान। उस विवेक ज्ञान से क्या तत्व होता है, तो विवेक ज्ञान क्या है वो 20 लक्षण बताया मैंने, तो अभिन्दु तो ये है वो मन बुद्धि आदि लगाना इंद्रिया लगाना ये नहीं है, अनहंकार से बताया इसमें अहंकार रहे तो लगता तो अहंकार से रही तो अहंकार दुख दर्शन तो ये सब इसमें आ गया अनहंकार तक हद कर दी आखिर तक ही हुआ ज्ञान। अब इन ज्ञान से ये क्या है उसका वर्णन करते हैं, तो वो ज्ञान का वर्णन है अठारह श्लोक, तो शत्रु तक वो वर्णन है शत्रु अठारह मोक्षण ज्ञान है आरम्भ से लेकर अठारह श्लोक तुम जितना प्रकरण आया है सबका उपसंहार अठारह श्लोक वाला अठारह के बाद में 19 में से प्रकृति और पुरुष का प्रकरण चलेगा 34 तक ऐसा ही 13। अब ये हम जब तत्व कक्षा में ज्ञातवा अब ये तत्व कहता हूं जानने के योग्य है। ये के दो अर्थ होते हैं, एक जानने का योग्य होता है एक जाना जा सकता है। ज्ञेयम सक्यम ज्ञान ज्ञातम सक्यम ज्ञेयम और ज्ञे ज्ञातम योग्यम ज्ञेयम, तो जानना लायक है। जैसे रामायण में औषधि की देखन जोगू एक सखी फुलवारी में देखने गई तो उसने राम जी के दर्शन कर लिए, उसने कहा तो अवश्य देखिए देखने योग्य देखने योग्य देखने के लायक है, तो देखने ही लायक है इस बात से वो ये देखने योगों का वो देखने योगों का अर्थ ये है मानो ये जानने लायक है इसको जरूर जानना चाहिए। इसके जाने बिना वास्तव में प्राप्ति नहीं होती, तो ये का वर्णन करते हैं। तो जानने योग्य है ये विवेक है पता है विवेक और विवेक के द्वारा जिसको जानते हैं उस नाम की है, तो ये कर्ण निरपेक्ष ही वर्णन हो रहा है अभी तक। कर्ण निरपेक्ष का कर्ण का वर्णन नहीं है, कर्ण वर्णों के वर्णों को जब से श्रवण हो मनन हो निर्देशन हो तत्व प्रदर्शन ये नहीं है। ज्ञेयम ये तत्प्रवक्षा में ज्ञेयम तत्प्रवक्षा में जो ज्ञे है जानने के योग्य है और जानने के योग्य है साथ साथ ज्ञेयम सक्यम जो जान सकते हैं हम जानने के योग्य हो न जान सके तो कैसा नहीं है जान सकते हो जानने के अधिकारी होते हैं। पहले ये ज्ञान हो जाएगा हमारे तो अधम तो आदि ये तो जब वो अध्यात्म नित्य तुम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक ये 20 साधन है, ऐसा जब विवेक हो जाएगा ठीक तो वो जानने के योग्य हो जाएगा उस तत्व को, तो ये ज्ञान हुआ। अब ये तत्व बताते ये जम ये तत्प्रवक्षा में जो ये जानने के लायक है उसको मैं कहूंगा। ये ज्ञातवा अमृतम जिसके जानने से अमरता की प्राप्ति हो जाए वो जानने योग्य है। ये कर्म निरपेक्ष है, इसमें कोई कर्णों की अपेक्षा नहीं है, ऐसा ज्ञेय तत्व बताता हूँ वो जानो। तो ज्ञाता हो ज्ञान हो जानने के लायक तत्व हो उसका विवेचन करने से वो ज्ञान की तैयारी हो जाए तो वो समझ में आ जाती है। ऐसा ज्ञातवा जिसके जानने से अमरता की प्राप्ति हो जाए, जानने मात्र से करना नहीं है उसमें कोई ध्यान समाधि जो करना नहीं है, जानने मात्र से विवेक विवेक जो विवेक पूर्व साधन है वो कर्ण विवेक साधन है, जिसमें जानना मात्र ये जानना एकदम जानते ही विभाग अलग अलग हो जाता है। तो जानने के योग्य स्थिति बताता हूँ, जैसे जानने मात्र में अमरता की प्राप्ति हो जाए, करना कुछ नहीं पड़ेगा। वो मैं कहूंगा अनादिमत परम ब्रह्म न सत्ता नाश, पहले मैं तो कहूंगा एक बात प्रतिज्ञा करी और उसका महात्म बताया दूसरे में, उनके जानने से अमरता की प्राप्ति हो जाए, सदा के लिए अमर हो जाए, फिर कभी भी मरना नहीं पड़े, ऐसी प्राप्ति हो जाए, इसका महात्म बताया। तो कहने की प्रतिज्ञा की और महात्म को एक लाइन में बताया, अब अमान्य तो मध्यम से करके अनादि मत परम ब्रह्म ज्ञान बताया, उस ज्ञान से यही है वो कैसा है। अनादिमत परम ब्रह्म सत्यनाशे वो अनादि है, अनादिमत अनादि वाला है, अनादि ऐसा भी करते हैं अनादि मत भी करते हैं, अनादिमत अनादि वाला है, मानो उस गेय का अनादि क्या है कि प्रकृति पुरुष दो गाड़ी बताएंगे, वो अनादि वाला गेय है ये तत्व। परम ब्रह्म उसको परम ब्रह्म कहा है, जैसे सातवें अध्याय में ब्रह्म और कर्म और अध्यात्म ज्ञान देगा ऐसा कहने के बाद आठवें में अर्जुन ने पूछा है किं तद ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है, उसके लक्षण बताए हैं अक्षरम ब्रह्म परमम, परमम अक्षरम ब्रह्म, परम अक्षर है वो ब्रह्म है, तो परम ब्रह्म ये परम ब्रह्म उस ब्रह्म का नाम है, ये परम अक्षरम ब्रह्म अनादिपत परम ब्रह्म नरतनाशुच्य। अब उसका वर्णन करते हैं कि ठीक तो ये कहूंगा प्रवक्ष्यामि प्रकर्षेण वक्ष्यामि कथयिष्यामि उस परिभाष में दृष्टि का, तो मैं अच्छी तरह से कहूंगा, अच्छी तरह से क्या कहते हैं न सच कहा जाता है उसमें न असत कहा जाता, ये अच्छी तरह से कहते तुम्हारा न उसको सत कह सकते न असत कह सकते, गीता में सत असत का वर्णन है, असत वो विदित भाव ना भाव विदित सत सत असत का वर्णन है, इसके बाद ये सोलह सोलह सत्र अठारह भाव में सत असत का दोनों विवेचन है, और उसके बाद कह दिया भाई तुम युद्ध करो ऐसी आज्ञा दी है, तो सत और असत दो चीज बताई, सत सत ही है असत असत ही है, सत का अभाव नहीं होता असत की सत्ता उसका भाव नहीं होता ऐसा है। यहाँ कहते हैं न सत्य नाश पूछते थे, वो न सत का जलसा न सत का सौदा, नौ अध्याय में भगवान ने कहा सत सत्य वर्गुण सत असत आम ये वर्गुण अर्जुन सत असत में ही हूं, और यह कहते सत असत नहीं कहा जा रहा, सत भी नहीं कहा जा सकता असत भी नहीं कहा जा सकता, और अर्जुन कहता सत असत तत्परंत आप सत भी हो असत भी हो और सत असत से परे भी आप हो, न तत् समझते दिल्ली की कुछ कोई नहीं, आपके समान भी कोई नहीं है, तो दूसरा क्या कहेगा जानता ही नहीं दूसरा बेचारा, तो सत नहीं कहा जा सकता असत नहीं कहा सकता, क्यों नहीं कहा जा सकता कि सत और असत ये सापेक्ष शब्द है, सत की अपेक्षा असत है असत की अपेक्षा सत है, तो जिन शब्दों में सापेक्षता होती है उनसे निरपेक्ष तत्व का वर्णन नहीं होता, इस वजह से वो सत भी नहीं कहा जा सकता असत भी नहीं कहा जा सकता, यही उसका वर्णन है। जैसे कवि पुराण मनसा सदारण मनोरणीयांश मनु स्मरे दिया सर्वस्व धातारम अचिंत्य रूपम, रूप अचिंत्य है ये आठवें अध्याय में कहा, तो अचिंत्य तत्व है, इस वजह से वो कहने में नहीं आए, वचन से जो कुछ कहोगे और सत असत का वर्णन करोगे तो सापेक्ष होगा, निरपेक्ष तत्व निरपेक्ष है, सबका निर्देश कर्म से भी कर्ता भी कर्म करना संप्रदान आदि आदि से निरपेक्ष है। इस बात को सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता। कर्म निरपेक्ष ही ऐसा कहा जा रहा, कर्म सापेक्ष उसको वर्णन करेगा, उसका चिंतन होगा, उसका अभ्यास होगा, तत्व साक्षात होगा, वो कर्म के साथ चलेगा। ये कर्म निरपेक्ष है, न सत का देख सकता ना असत कहा जा सकता है। कैसे वो तत्व है तो बताते हैं, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम। सर्वतः पाणिपादं तत्व वो है ज्ञेयम् यत् तत्व वक्ष्यामि। एक तत्पद होता है, एक तम पद होता है, तो यहाँ तत्पद का भी विवेचन हो रहा है, तत्पद का नहीं, तम पद का नहीं है। ज्ञेयम् यत् तत्व प्रवक्ष्यामि, जो ये ज्ञेय है वो तत्कहूंगा, तत्पद का होगा। तो तत्पद कैसा है कि सर्वतः पाणिपादं तत्, सब जगह हाथ और पांव है उसके, सब जगह हाथ और पांव, कोई ऐसी जगह नहीं जो हाथ न हो पांव न हो। ये हाथ पांव तो उपलक्षण है, आगे वर्णन किया सर्वतः अक्षी शिरोमुख, अखा सब जगह, शिरोमुख जगह, मुख सब जगह, सब जगह श्रुति मतलब सर्वमापृत स्थिति ऐसा है। तो सर्वतः पाणिपादं तत् कैसे भाई, जैसे सोने का ढेला होता है, उस सोने के ढेले में सब तरह के गहने सब जगह मौजूद है। सोना का ढेला हो, उसमें कौन सा गहना कहाँ है ऐसा नहीं कह सकते, सब गहने सब जगह है। सुनारे का निकालो तो जिस जगह आप चाहो जो सर तो कोई निकाल देगा। यह स्याही है, उस स्याही में कौन सी स्याही, कौन सी भाषा भरी हुई है, क्यों वैसे उर्दू अंग्रेजी कर्नाटकी सब तरह की लिपि स्याही में भरी हुई है। सब है के सब तरह के चित्र करने का उस रंग में भरा हुआ है, सब तरह के रंग उसमें आ जाते हैं, और दिखने में कोई अक्षर नहीं दिखता, स्याही में कोई अक्षर नहीं दिखता, और सब तरह के अक्षर भरे हुए हैं। रंग में कोई सी मूर्ति नहीं दिखती, और सब मूर्तियां भरी हुई है, ऐसे इसमें सब भरे हुए हैं। भगवान ऐसे एक विलक्षण है, सब जगह है, पाणिपाद हाथ और पांव है। मन भगवान की उपासना करने वाला यहाँ कुछ दे तो भगवान यही ले लेते हैं, यहाँ इसी जगह ही यही ले लेंगे, और चरणों में नमस्कार कर दो यहाँ ही चरण आ जाएंगे। जिस जगह हाथ है उसी जगह ही चरण भी है, और चरण नहीं आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, इंद्रिया भी है, सब कुछ भगवान सब जगह है। जैसे सोने के ढेले में सब तरह की मूर्तियां होती है, जैसे स्याही में सब तरह की लिपियां होती है, तो सब तरह की लिपि उसमें स्याही से बता सकते हैं। ऐसे सर्वतः पाणिपादं तत् वो तत् स्वरूप परमात्मा कैसा है, सबसे हाथ पोष है, और सर्वतोक्ष शिरोमुखम सब जगह आंख है। तो भगवान को दीपक दिखावे तो यही दीपक दिखा देते, यही नेत्र है, और यहाँ पुष्प से गा जाए तो यहाँ भगवान का मस्तक है, और भगवान को भोजन कराओ तो यही कर यही भगवान का मुख है। भगवान की एक अंगुली है, उस अंगुली में चरण भी है, पांव भी है, और आंखें भी है, मस्तक भी है, मुख भी है, और सर्वतः श्रुति में कान भी है, सबसे व्यापक भी है, सब जगह है। इतनी सी चीज में मानो परमात्मा का कोई सही अवयव, कोई सही स्वरूप अधूरा नहीं है, वो पूर्ण ही पूर्ण होता है। जिस तरह से बालकों की माँ होती है, सात आठ बालक है जिसके, उन बालकों की माँ पूरी की पूरी, ऐसे नहीं आठ बालक है तो आठवां हिस्सा बालक का होगा, आठवां हिस्सा माँ का है, ये दूसरा हिस्सा हमारा भाई, आठ बालक अलग अलग हिस्सा करे माँ, ऐसा नहीं हो। माँ पूरी की पूरी सबकी, एक बालक कहता आठ आठ, आठवीं बालक अपनी माँ को पूरी माँ कहते हैं। ऐसे भगवान के पूर्ण रूप है, भगवान के नख है उसमें भी पूर्ण भगवान है, भगवान की आंख है उसमें पूरे भगवान है, भगवान एक अंग नहीं है, उस अंगुली में भी पूरे भगवान है। जिस तरह सोने में सबसे गहने होते हैं, जैसे लिपि में सबसे अक्षर होते हैं, रंग में जैसे सब जगह की मूर्तियां होती है, इस तरह से भगवान सब जगह पूर्ण है। पूर्ण पूर्ण से पूर्ण माता है, पूर्ण मदर पूर्ण विदम पूर्ण तो ये है, पूर्ण वह है। और पूर्ण को पूर्ण आदर तो पूर्ण शेष रहता है, पूर्ण से पूर्ण निकालते फिर रहता पाक बाकी भी पूर्ण रहता है, अपूर्ण तो उसमें होती ही नहीं, क्यों अपूर्ण है ही नहीं, पूर्ण ही है सर्वथा। उसका ये वर्णन करते हैं ये तत्व ऐसा है, वो पूर्ण है। स्वरूप आवृत सति सबको आवृत करके रहता है, कैसा बैठा है, सबको व्याप्त करके। समय ही सामरू मेरी नगरी में उत्तर जो है आया, सने ही सामरू की नदोक की रामत रमाता, हृदय में रहे है समा। तीन लोग तो खिलौना है छोटा सा खेलता है, और राई में आसन लगाया खूब अच्छी तरह सो जाता है, सो जाता है पूर्ण का पूर्ण राई में रहता है। तीन लोग जमुस करता खेल करता है, ऐसा वो किए तत्व है। कैसी विदास है सर्व आवृत थी सबको आवृत सब घेर कर गए, और वो सब का परमात्मा रहता राई में पूरा का पूरा सो जाता है। सविकास जगंत्याम सबका समास होता, सब जगत आकाश अवकाश सहित खुली रहती है, खुला रहता है वहां पर, कोई संकोच नहीं। राई थोड़ा बड़ा है स्थान तो उसमें संकोच भगवान शुक्र कर रहे नहीं, पूरा फैल कर उसमें। और ये सब संसार जितना दिखता है और जितना सुनने में आता है, जो भूलोक भोलोक विजन लोग तप लोग सत लोग आदि उतरे अतल वितल सुतल सतल महातल पाताल और महातल, ये चौदह भुवनों में एक समान रहता है। चौदह भुवन है उसको छोटा सा भी खिलौना है, और सर्वभूतों के बाहर भीतर भूई है, और आप इतना है जो किस भूत में किसी अंश में, जैसे रोम रोम प्रति पराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान एक रूप में करोड़ों ब्रह्मांड के ब्रह्मांड करोड़ों रहते हैं। एक जैसे है जालांतर गति भानव, सुबह का समय हो और सूर्य उदय हो गया, उसकी किरण आती है अंधेरी कोठरी में बैठे कुमार में होकर कुछ छेद है, उस छेद में से एक किरण आती है, घाम आता है वो, तो उसमें घाम आता है ऐसा, उसमें डंडे की तरह दिखता हो प्रकाश डंडा हो जैसे दिखता है वो, उसमें छोटे छोटे अणु घूमते हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक, वो केवल अणु अणु से वो सफेद एक डंडा दिखता है तो घाम पर दिखता है, जिसमें सब भरे हुए हैं छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण इतने बारीक है कि जिसको आप और हाथ में नहीं ले सकते, पकड़ नहीं सकते, इतने बारीक है। उसमें जो सूक्ष्म अंग है सूक्ष्म कुदड़ है, उसका सातवां भाग उसको परमाणु कहते हैं, ऐसे परमाणु भरे हुए सभी वे सब के सब परमाणु डंडे की तरह दिखते हैं, ऐसे भगवान के एक रोम के छेद में ऐसे वैसे से परमाणु उसमें जिसके कई सैकड़ों हजारों गिन दे सकते, इतना दिखते वो इतना घना हुआ आकार जो होता है डंडा जो प्रकाश आता है, उस प्रकाश में भी कितने कण है और कैसे कैसे विलक्षण कण है, एक एक से अलौकिक है ऐसे कण है, और ये भरे हुए हैं डंडे सबका सब प्रकाश भरा हुआ है, तो प्रकाश होने से वहाँ उनमें प्रतीत होता है वो भरा हुआ यहाँ भी ऐसा ऐसा का ऐसा ही यहाँ भरा हुआ है, ऐसे भगवान ने रूम रूम में अनंत ब्रह्मांड उन कणकों से बारीक कणकों की तरह रहता है, इतने बड़े अणु अणुयान और महत्व महियान सूक्ष्म सूक्ष्म भी महत्व है, महान से महान भी है, ऐसा वो परमात्मा है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म राई में भी बड़े शांति से फैल करके सो जाते हैं, और एक एक रूप में अनंत ब्रह्मांड के ब्रह्मांड घूमते है, ऐसा वो किए तत्व है।